जब कभी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों की चर्चा होती है, वहां प्रख्यात साहित्यकार भीष्म साहनी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इनको हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। भीष्म साहनी उन लेखकों में से थे जिनकी कहानियां सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती थीं। भीष्म साहनी की कहानी गंगो का जाया। गंगो की जब नौकरी छूटी तो बरसात का पहला छींटा पड़ रहा था। पिछले 3 दिन से गहरे नीले बादलों के पुंज आकाश में करवटें ले रहे थे, जिनकी छाया में गर्मी से अलसाई हुई पृथ्वी अपने पहले ठंडे उच्छ्वास छोड़ रही थी और शहर भर के बच्चे बूढ़े बरसात की पहली बारिश का नंगे बदन स्वागत करने के लिए उतावले हो रहे थे। ये दिन नौकरी से निकाले जाने का न था। मजदूरी की नौकरी थी बेशक, पर बनी रहती तो इसकी स्थिरता में गंगो भी बरसात की छींटों का शीतल स्पर्श कर लेती। पर हर शगुन के अपने चिन्ह होते हैं। गंगो ने बादलों की पहली गर्जन में ही जैसे अपने भाग्य की आवाज सुन ली थी। नौकरी छूटने में देर नहीं लगी। गंगो जिस इमारत पर काम करती थी उसकी निचली मंजिल तैयार हो चुकी थी। अब दूसरी मंजिल पर काम चल रहा था। नीचे मैदान में से गारे की टोकरियां उठा उठा कर छत पर ले जाना गंगो का काम था। मगर आज सुबह गंगो टोकरी उठाने के लिए जमीन की ओर झुकी तो उसके हाथ जमीन तक ना पहुंच पाए। जमीन पर पांव के पास पड़ी हुई टोकरी को छूना एक गहरे कुएं के पानी को छूने के समान होने लगा। इतने में किसी ने गंगो को पुकारा, मेरी मान जाओ गंगा, अब टोकरी तुमसे ना उठेगी, तुम छत पर ईंट पकड़ने के लिए आ जाओ। छत पर लाल ओढ़नी पहने और 4 ईंटें उठाए दूलो मजदूरन खड़ी उसे बुला रही थी। गंगो ने न माना और फिर एक बार टोकरी उठाने का साहस किया, मगर होंठ काट कर रह गई। टोकरी तक उसका हाथ ना पहुंच पाया। गंगो के बच्चा होने वाला था, कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। छत पर बैठकर ईंट पकड़ने वाला काम आसान था। एक मजदूर नीचे मैदान में खड़ा एक एक ईंट उठाकर छत की ओर फेंकता और ऊपर बैठी मजदूरन उसे झपट कर पकड़ लेती। मगर गंगो का इस काम से खून सूखता था, कहीं झपटने में हाथ चूक जाए और उड़ती हुई ईंट पेट पर आ लगे तो क्या होगा। ठेकेदार हर मजदूर के भाग्य का देवता होता है। जो उसकी दया बनी रहे तो मजदूर के सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, पर जो देवता के तेवर बदल जाएं तो अनहोनी भी होके रहती है। गंगो खड़ी सोच ही रही थी कि कहीं से मकान की परिक्रमा लेता हुआ ठेकेदार सामने आ पहुंचा। छोटा सा पतला शरीर, काली टोपी, घनी घनेरी मूछों में से बीड़ी का धुआं छोड़ता हुआ गंगो को देखते ही चिल्ला उठा, खड़ी देख क्या रही है, उठाती क्यों नहीं, जो पेट निकला हुआ था तो आई क्यों थी। गंगो धीरे धीरे चलती हुई ठेकेदार के सामने आ खड़ी हुई। ठेकेदार का डर होते हुए भी गंगो के होठों पर से वो हल्की सी इसने मुस्कान ओझल न हो पाई जो महीने भर से उसके चेहरे पर खेल रही थी, जब से बच्चे ने गर्भ में ही अपने कौतुक शुरू कर दिए थे। और गंगो की आंखें जैसे अंतर्मुखी हो गई थी। ठेकेदार झगड़ता तो भी शांत रहती और जो उसका घरवाला बात बात पर तेनक उठता तो भी चुपचाप सुनती रहती। काम क्यों नहीं करूंगी, छत पर ईंट पकड़ने का काम दे दो, वो कर लूंगी, गंगो ने निश्चय करते हुए कहा। तेरे बाप का मकान बन रहा है, जो जी चाह करेगी, चल दूर हो यहां से, आधे दिन के पैसे ले और दफा हो जा, हराम खोर आ जाते हैं। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, दूलो मेरा काम कर लेगी, मैं उसकी जगह चली जाऊंगी, काम तो होता रहेगा। पहले पेट खाली करके आओ फिर काम मिलेगा। क्षण भर में ठेकेदार का रजिस्टर खुल गया और गंगो के नाम पर लकीर फिर गई। एन उसी वक्त बारिश का छींटा भी पड़ने लगा था। गंगो ने समझ लिया कि जो आसमान में बादल न होते तो काम पर से भी छुट्टी ना मिलती। आकाश में बादल आए नहीं कि ठेकेदार को काम खत्म करने की चिंता हुई नहीं। इस हालत में गर्भ वाली मजदूरन को कौन काम पर रखेगा। गंगो चुपचाप ओढ़नी के पल्ले से अपने गर्भ को ढकती हुई बाहर निकल आई। उन दिनों दिल्ली फिर से जैसे बसने लगी थी। कोई दिशा या उपदिशा ऐसी न थी जहां नई आबादियों के झुरमुट ना उठ रहे हों। नए मकानों की लंबी कतारें समुद्र की लहरों की तरह फैलती हुई अपने प्रसार में दिल्ली के कितने ही खंडर और स्मृति कंकाल रौनती हुई बढ़ रही थी। देखते ही देखते एक नई आबादी गर्व से माथा ऊंचा किए समय का उपहास करती हुई खड़ी हो जाती। लोग कहते दिल्ली फिर से जवान हो रही है। नई आबादियों की बाढ़ आ गई थी। नया राष्ट्र, नए निर्माण कार्य, लोगों को इस फैलती राजधानी पर गर्व होने लगा था। जहां कहीं किसी नई आबादी की योजना पनपने लगती तो सैकड़ों मजदूर खिंचे हुए अपने फूस के छप्पर कंधों पर उठाए वहां जा पहुंचते और उसी की बगल में अपनी झोपड़ी की बस्ती खड़ी कर लेते। और जब वो नई आबादी बनकर तैयार हो जाती तो फिर मजदूरों की टोलियां अपने फूस के छप्पर उठाए किसी दूसरी आबादी की नींव रखने चल पड़ती। मगर ज्यों ही बरसात के बादल आकाश में मंडराने लगते तो सब काम ठप हो जाता और मजदूर अपने झोपड़ों में बैठे आकाश को देखते हुए चौमासे के दिन काटने लगते। कई मजदूर अपने गांव को चले जाते पर अधिकतर छोटे मोटे काम की तलाश में सड़कों पर घूमते रहते। काम इतना न था जितने मजदूर आ पहुंचते थे। दिल्ली के हर खंडर की अपनी कथा है, अपनी गाथा है, पर मजदूर की फूस की झोपड़ी का क्या खंडर होगा और क्या कहानी होगी। हंसती खेलती नई आबादियों में इन झोपड़ों का या इन झोपड़ों में खेले गए नाटकों का स्मृति चिन्ह भी नहीं मिलता। उस रात गंगो और उसका पति घीसू देर तक झोपड़े के बाहर बैठे अपनी स्थिति को सोचते रहे। जो छुट्टी मिल गई तो तू घर क्यों चली आई, कहीं दूसरी जगह काम देखती। देखा है इस हालत में कौन काम देगा, जहां जाओ ठेकेदार पेट देखने लगते हैं। झोपड़े के अंदर उनका 6 बरस का लड़का रीसा सोया हुआ था। घीसू कई दिनों से चिंतित था। 3 आदमी खाने वाले और कमाने वाला अब केवल 1, और ऊपर चौमासा और गंगो की हालत। उसका मन खींच उठा। अगर और 15-20 रोज मजदूरी पर निकल जाते तो क्या मुश्किल था। गर्व वाली औरतें बच्चा होने वाले दिन तक काम पर जुटी रहती हैं। घीसू गठीले बदन का नाटे कद का मजदूर था। जो किसी बात पर तिनक उठता तो घंटों उसका मन अपने काबू में न रहता। थोड़ी देर चिलम के कश लगाने के बाद धीरे धीरे कहने लगा, तुम गांव चली जाओ। गांव में मेरा कौन है? तू पहले ही सब पाट पड़े हुए है। तू इस हालत में जाएगी तो तुझे घर से निकाल देंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा भाई जमीन पर पांव नहीं रखने देगा। 2 दफे तो तुमसे लड़ने मरने की नौबत आ चुकी है, तो यहां क्या करेगी? मेरे काम का भी कोई ठिकाना नहीं। सुनते हैं सरकार ज्यादा मजदूर लगाकर 3 दिन में बाकी सड़क तैयार कर देना चाहती है। मरम्मती काम तो चलता रहेगा, गंगो ने धीरे से कहा। मरम्मती काम से 3 जीव खा सकते हैं? 1 दिन काम है, 4 दिन नहीं। काफी रात गए तक ये उधेड़ बुन चलती रही। सोमवार को गंगो काम पर से बर्खास्त हुई और सनीचर तक पहुंचते पहुंचते झोपड़ी की गिरस्ती डावा डोल हो गई। माँ बाप और बेटा, 3 जीव खाने वाले और कमाने वाला केवल 1। गंगो काम की तलाश में सुबह घर से निकल जाती और दोपहर तक बस्ती के 3-3 चक्कर काटाती। किसी से काम को पूछती तो या तो वो हंसने लगता या आसमान पर मंडराते बादल दिखा देता। सड़कों पर दर्जनों मजदूर दोपहर तक घूमते हुए नजर आने लगे। फिर एक दिन जब घीसू ने घर लौटकर सुना दिया कि सरकारी सड़क का काम समाप्त हो चुका है तो घीसू और गंगो मजदूरों के स्तर से लुढ़क कर आवारा लोगों के स्तर पर आ पहुंचे। कभी चूल्हा जलता, कभी नहीं। भर पेट खाना किसी को न मिल पाता। छोटा बालक रीसा, जो दिन भर खेलते न थकता था, अब झोपड़े के इर्द गिर्द ही मंडराता रहता। पति पत्नी रोज रात को झोपड़े के बाहर बैठते, झगड़ते, परामर्श करते और बात बात पर खींच उठते। फिर एक रात हजार सोचने और भटकने के बाद घीसू के उद्विग्न मन ने घर का खर्चा कम करने की तरकीब सोची। अधभरे पेट की भूख को चिल्लम के धुएं से शांत करते हुए बोला, रीसे को किसी काम पर लगा दें। रीसा क्या करेगा, छोटा सा तो है।
छोटा है, चंगे भले आदमी का राशन खाता है, इस जैसे सब लड़के काम करते हैं।
गंगो चुप रही। कमाऊ बेटा किसे अच्छा नहीं लगता, मगर रीसा अभी सड़क पर चलता भी था तो बाप का हाथ पकड़कर, वो क्या काम करेगा। पर घीसू कहता था, इस जैसे लौंडे बूट पॉलिश करते हैं, साइकिलों की दुकानों पर काम करते हैं, अखबार बेचते हैं, क्या नहीं करते। कल इसे मैं गणेशी के सुपुर्द कर दूंगा, इसे बूट पॉलिश करना सिखा देगा। गणेशी घीसू के गांव का आदमी था। इस बस्ती से एक फलांग दूर पुल के पास छोटी सी कोठड़ी में रहता था। एक छोटी सी संदूकची कंधे पर लटकाए गलियों के चक्कर काटता और बूटों के तलवे लगाया करता था। दूसरे दिन घीसू काम की खोज में झोपड़े में से निकलते हुए गंगो को कह गया,
मैं गणेशी को रास्ते में कहता जाऊंगा, तू सूरज चढ़ने तक रीसे को उसके पास भेज देना।
रीसा काम पर निकला। छोटा सा पतला शरीर, चकित उत्सुक आंखें, बदन पर एक ही कुर्ता लटकाए हुए। गणेशी के घर तक पहुंचना कौन सी आसान बात थी। रस्ते में प्रकृति रीसे के मन को लुभाने के लिए जगह जगह अपना माया जाल फैलाए बैठी थी। किसी जगह दो लौंडे झगड़ रहे थे, उनका निपटारा करना जरूरी था। रीसा घंटा भर उन्हीं के साथ घूमता रहा। कहीं एक भैंस कीचड़ में फंसी पड़ी थी, कहीं पर एक मदारी अपने खेल दिखा रहा था। रीसा दिन भर घूम फिर कर दोपहर के वक्त हाथ में एक छड़ी घुमाता हुआ घर लौट आया। कह देना आसान था कि रीसा काम करे, मगर रीसे को काम में लगाना नए बैल को हल में जोतने के बराबर था। पर उधर झोंपड़े में बची बचाई रसद छेड़ होती जा रही थी। दूसरे दिन घीसू उसे स्वयं गणेशी के सुपुर्द कराया और 5-7 अपने पैसे भी पॉलिश की डिबिया और ब्रश के लिए दे आया। उस दिन तो रीसा जैसे हवा में उड़ता रहा। दिल्ली की नई नई गलियां घूमने को मिली, नए नए लोग देखने को मिले, चप्पे चप्पे पर आकर्षण था। रीसे की समझ में ना आया कि बाप गुस्सा क्यों हो रहा था जब उसे यहाँ घूमने के लिए भेजना चाहता था। दुकानें रंग बिरंगी चीजों से लदी हुई और भीड़ इतनी कि रीसे का लुप्त मन भी चकरा गया। रीसे की माँ सड़क पर आंखें गढ़ाए उसकी राह देख रही थी। जब रीसा अपने बोझल पांव खींचता हुआ घर पहुंचा, अपने 6 सालों के नन्हे से जीवन में वो इतना कभी नहीं चल पाया था जितना कि वो आज एक दिन में। मगर माँ को मिलते ही वो उसे दिन भर की देखी दिखाई सुनाने लगा। और जब बाप काम पर से लौटा तो रीसा अपना ब्रश और पॉलिश की डिबिया उठाकर भागता हुआ उसके पास पहुंचा।
बापू, तेरा जूता पॉलिश कर दूं?
जिसे सुनकर घीसू के हर वक्त तने हुए चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान दौड़ गई।
मेरा नहीं, किसी बाबू का करना जो पैसे भी देगा।
और गंगो और उसका पति अपने कमाऊ बेटे की दिनचर्या सुनते हुए कुछ देर के लिए अपनी चिंताएं भूल गए। दूसरा दिन आया। घीसू और रीसा अपने अपने काम पर निकले। दो रोटियां एक चिथड़े में लिपटी हुई घीसू की बगल के नीचे और एक रोटी रीसे की बगल के नीचे। दोनों सड़क पर इकट्ठे उतरे और फिर अपनी अपनी दिशा में जाने के लिए अलग हो गए। पर आज रीसा जब सड़क की तलाई पार करके पुल के पास पहुंचा तो गणेशी वहां पर नहीं था। थोड़ी देर तक मुंह में उंगली दबाए वो पुल पर आते जाते लोगों को देखता रहा, फिर गणेशी की तलाश में आगे निकल गया। शहर की गलियां एक के बाद एक अपना जटिल इंद्रजाल फैलाए जैसे रीसे के इंतजार में ही बैठी थी। एक के बाद दूसरी गली में बढ़ने लगा, मगर किसी में भी उसे कल का परिचित रूप नजर नहीं आया, न ही कहीं गणेशी की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर तक घूमने के बाद रीसा एक गली के मोड़ पर बैठ गया, अपनी पॉलिश की डिबिया और ब्रश सामने रख लिए और अपने पहले ग्राहक की इंतजार करने लगा। गणेशी की तरह उसने मुंह टेढ़ा करके पॉलिश का शब्द पूरी चिल्लाहट के साथ पुकारा। पहले तो अपनी आवाज ही सुनकर स्तब्ध हो रहा, फिर निसंकोच बार बार पुकारने लगा। 5-7 मर्तबा जोर जोर से चिल्लाने पर एक बाबू जो सामने एक दुकान की भीड़ में सौदा खरीदने के इंतजार में खड़ा था रीसे के पास चला आया।
पॉलिश करने का क्या लोगे?
जो खुशी हो दे देना।
रीसे ने गणेशी के वाक्य को दोहरा दिया। बाबू ने बूट उतार दिए और दुकान की भीड़ में फिर जाकर खड़ा हो गया। रीसे ने अपनी डिबिया खोली। गणेशी के वाक्य तो वह दोहरा सकता था, मगर उसकी तरह हाथ कैसे चलाता? बूट पर पॉलिश क्या लगी जितनी उसकी टांगों, हाथों और मुंह को लगी। एक जूते पर पॉलिश लगाने में रीसे की आधी डिबिया खर्च हो गई। अभी बूट के तलवे पर पॉलिश करने की सोच ही रहा था कि बाबू सामने आन खड़ा हुआ। रीसे के हाथ अनजाने में ठिटक गए। बाबू ने बूटों की हालत देखी, आओ देखा न ताओ, जोर से रीसे के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, जिससे रीसे का मुंह घूम गया। उसकी समझ में न आया कि बात क्या हुई है। गणेशी को तो किसी बाबू ने थप्पड़ नहीं मारा था।
हरामजादे, काले बूटों पर लाल पॉलिश,
और गुस्से में गालियां देने लगा। पास खड़े लोगों ने यह अभिनय देखा, कुछ हंसे, कुछ एक ने बाबू को समझाया, दो एक ने रीसे को गालियां दी और उसके बाद बाबू गालियां देता हुआ बूट पहनकर चला गया। रीसा हैरान और परेशान, कभी एक के मुंह की तरफ कभी दूसरे के मुंह की तरफ देखता रहा और फिर वहां से उठकर धीरे धीरे गली के दूसरे कोने पर जाकर खड़ा हो गया। हर राह जाते बाबू से उसे डर लगने लगा। गणेशी की तरफ पॉलिश चिल्लाने की उसकी हिम्मत न हुई। रीसे को माँ की याद आई और उल्टे पांव वापस हो लिया, मगर गलियों का कोई छोर किनारा न था। एक गली के अंत तक पहुंचता तो 4 गलियां और सामने आ जाती। अनगिनत गलियों में घूमने के बाद वो घबरा कर रोने लगा, मगर वहां कौन उसके आंसू पोंछने वाला था। एक गली के बाद दूसरी गली लांघता हुआ, कभी गणेशी की तलाश में, कभी माँ की तलाश में, वो दोपहर तक घूमता रहा। बार बार रोता और बार बार स्तब्ध और भयभीत चुप हो जाता। फिर शाम हुई और थोड़ी देर बाद गलियों में अंधेरा छाने लगा। वो एक गली के नाके पर खड़ा सिसकियां ले रहा था कि उस जैसे ही लड़कों का टोला यहाँ वहाँ से इकट्ठा होकर उसके पास आ पहुँचा। एक छोटे से लड़के ने अपनी फटी हुई टोपी सिर पर खिसकाते हुए कहा,
अबे साले रोता क्यों है?
दूसरे ने उसका बाजू पकड़ा और रीसे को खींचते हुए एक बरांडे में नीचे ले गया। तीसरे ने उसे धक्का दिया। चौथे ने उसके कंधे पर हाथ रखे हुए उसे बरांडे के एक कोने में बिठा दिया। फिर उस छोटे से लड़के ने अपने कुर्ते की जेब में से थोड़ी सी मूंगफली निकालकर रीसे की झोली में डाल दी।
ले साले, कभी कोई रोता भी है? हमारे साथ घुमा कर, हम भी बूट पॉलिश करते हैं।
आधी रात गए, नन्हा रीसा जीवन की एक पूरी मंजिल एक दिन में लांघ कर अपने सिर के नीचे ब्रश और पॉलिश की डिबिया और एक छोटा सा चिथड़ा रखे उसी बरांडे की छत के नीचे अपनी यात्रा के नए साथियों के साथ भाग्य की गोद में सोया पड़ा था। उधर झोंपड़े के अंदर लेटे लेटे कई घंटे की विफल खोज के बाद घीसू गंगो को आश्वासन दे रहा था,
मुझे कौन काम सिखाने आया था? सभी गलियों में ही सीखते हैं, मरेगा नहीं, घीसू का बेटा है, कभी न कभी तुझसे मिलने आ जाएगा।
घीसू का उद्विग्न मन जहाँ बेटे के यूं चले जाने पर व्याकुल था, वहां इस दारुण सत्य को भी न भूल सकता था कि अब झोंपड़े में 2 आदमी होंगे और बरसात कटने तक और गंगू की गोद में नया जीव आ जाने तक झोंपड़ा शायद सलामत खड़ा रह सकेगा। गंगो झोंपड़े की बालिश भर ऊंची छत को ताकती हुई चुपचाप लेटी रही। उसी वक्त गंगो के पेट में उसके दूसरे बच्चे ने करवट ली। जैसे संसार का नवागंतुक संसार का द्वार खटखटाने लगा हो। और गंगो ने सोचा, ये क्यों जन्म लेने के लिए इतना बेचैन हो रहा है। गंगो का हाथ कभी पेट के चपल बच्चे को सहलाता, कभी आंखों से आंसू पोंछने लगता। आकाश पर बरसात के बादलों से खेलती हुई चांद की किरणों के नीचे नए मकानों की बस्ती झिलमिला रही थी। दिल्ली फिर बस रही थी और उसका प्रसार दिल्ली के बढ़ते गौरव को चार चांद लगा रहा था। अभी आपने सुनी भीष्म साहनी जी की कहानी गंगो का जाया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए विदा।